ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टके। श्रीमद्भागवतम स्कंध छ अध्याय नौ श्लोक संख्या 11 वृतासुर राक्षस का आविर्भाव। हत हत पुत्र ततः त्वष्टा जुहावा इंद्राय सत्रवे। इंद्र सत्रो विवर्धस्व मा शिरम जहे विद्विषम्। हदपुत्रस्तता त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे। इंद्र सत्रो विवर्धस्व मा चिरं जहि विद्वसम्। हत पुत्र जिसका पुत्र मर चुका है, ततः तत्पश्चात त्वष्टा त्वष्टा ने जुहाव यज्ञ किया इंद्राय इंद्र के लिए। सत्रवे एक शत्रु उत्पन्न करने के लिए। इंद्र सत्तो हे इंद्र के शत्रु। विवर्धस्व बढ़ो। मा मत चिरम दीर्घ काल के बाद। जहि मारो विद्विषम अपना शत्रु। अनुवाद इस प्रकार से है, विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्ध हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। कृपया दोहराने का कष्ट करें। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। त्वष्टा के द्वारा उच्चारित मंत्र में कुछ त्रुटि रह गई थी, क्योंकि उसने हर्ष के बजाय दीर्घ स्वर में उच्चारण किया, जिससे मंत्र का अर्थ बदल गया था। त्वष्टा इंद्र सत्तो शब्द का उच्चारण करना चाहता था, जिसका अर्थ है हे इंद्र के शत्रु। इस मंत्र में इंद्र संबंध कारक खष्टी में आया है। और इंद्र सत्रों में तत्पुरुष समास कहलाता है। दुर्भाग्यवश त्वष्टा ने इस मंत्र का थोड़े समय के बजाय देर तक उच्चारण किया, जिससे उसका अर्थ इंद्र के शत्रु से बदलकर इंद्र जो शत्रु है हो गया। फलस्वरूप इंद्र का शत्रु न प्रकट होकर वृतासुर का शरीर प्रकट हुआ, जिसका शत्रु इंद्र था। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्य श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हत पुत्रस्ततः त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रुवे इंद्र सत्तो विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए। उसने अग्नि में उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। हम सभी लोग श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंध के नवे अध्याय का रसास्वादन कर रहे हैं। ये छठा स्कंध जो भागवतम में 10 विषय हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं, उसमें पोषण का वर्णन करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पोषण का ही वर्णन है। अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जो श्रीमद् भागवतम का ये विषय जहाँ देखिए त्वष्टा ने अपने पुत्र के बदले की भावना से ग्रसित होकर के यज्ञ का अनुष्ठान किया इंद्र को वध करने के लिए, तो ऐसा देखा जाता है, देखने से ऐसा लगता है भागवतम में ये सब विषयों का क्यों बढ़ा, क्योंकि भागवतम तो परमहंस संहिता है तथा परमहंसा नाम ये परमहंस संहिता है। लेकिन इसे ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि आप इसी विषय से वृत्तासुर के चरित्र से महाभागवत पुराण पहचाना जाता है। शास्त्र में वर्णन है कि वो पुराण सबसे महान है जिसमें वृत्तासुर के चरित्र का वर्णन है। तो दिव्य ये दिव्य सभी भागवतम के जितने भी विषय हैं सब, चाहे दशम स्कंद हो या प्रथम स्कंद हो, सब दिव्य धरातल पर है। तो यहाँ हमको कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा देखिए, इस संसार में बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं और सबके चार सब व्यवस्थाओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित हैं। और ब्राह्मणों की शक्ति यज्ञ है, तपस्या और यज्ञ। क्षत्रियों की शक्ति शारीरिक शक्ति होती है, युद्ध कुशलता होती है। वैश्यों की शक्ति धन कमाने की होती है और शूद्रों की शक्ति बढ़ती है सेवा करने से। तो ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं, वो ब्राह्मण भी तीनों गुणों में होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दिव्य धरातल पर होता है, ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, लेकिन इस भौतिक जगत में आप सत्वगुण में होते हुए कभी रजोगुण में भी आ सकते हैं और तमोगुण में भी आ सकते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। इसलिए बड़े बड़े विभूतियां हम देखते हैं कि कभी कभी इंद्र जैसे महान देवता, त्वष्टा जैसे ब्राह्मण भी धीरे धीरे रजो और तमोगुण में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत में भगवान गीता में वर्णन करते हैं तीन गुणों की होड़ लगी रहती है, तीनों गुणों की होड़ रहती है। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य धरातल पर है वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में ये अर्जुन को शिक्षा देते हैं, हे अर्जुन त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन है, ये तुम्हें आपको तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। यहां तक वेद, ये यज्ञ जो है वेद के भाग है, पार्ट है, यज्ञ दान तप है, सब वेदों में वर्णित है। तो हम देखते हैं संसार में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग भावना से यज्ञ किया करते हैं। यहां तो अष्टा इंद्र का वध करने के लिए यज्ञ कर रहा है। कहते हैं कि इस श्लोक में वर्णन है, हत पुत्र ततः त्वष्टा, अपने पुत्र की बदले की भावना से ग्रसित होकर के या बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। हम सब प्रतिदिन क्लास चल रहा है तो हम पीछे की कथा सुन चुके होंगे किस प्रकार से इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। तो अभी ये स्वभाव, बदला लेने का स्वभाव जो तीनों गुणों से ग्रसित है उसमें ही होता है। परफेक्ट ब्राह्मण त्वष्टा साधारण व्यक्ति नहीं, जो कि यज्ञ करके एक इंद्र का शत्रु उत्पन्न कर सकता है। इतना महान ब्राह्मण भी उसका यज्ञ रजोगुण और तमोगुण में है। इस संसार में कोई भी क्रियाएं भौतिक जगत में तीनों गुणों में ही होती हैं, तीनों गुणों, और सत्व गुण से स्वयं का विनाश और दूसरों का विनाश होता है। सेम रजोगुण का भी स्वभाव है मोर ऑर लेस, सत्व गुण से व्यक्ति का ज्ञान होता है, वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न, हम कभी कभी देखते हैं कि भक्ति भी जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं वो उस प्रकार की भक्ति भी व्यक्ति की भक्त की भावना के अनुसार तमोगुण और रजोगुण सत्वगुण में होती है। कभी कभी हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, तो किसी का अहित करने के लिए हृदय में प्रार्थना करते हैं, वो वास्तव में भक्ति का फल नहीं है, वास्तविक फल नहीं है, लेकिन हम उस भावना से ग्रसित हैं अज्ञानता के कारण तीनों गुणों के वशीभूत होकर के इस प्रकार की भावना लेके हम भक्ति करते हैं। भक्ति जो संकीर्तन यज्ञ है और ये यज्ञ जो भौतिक लाभ के लिए किया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप देख सकते हैं क्योंकि संकीर्तन यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, चाहे व्यक्ति किसी भी भावना से करे उसको एक ही लाभ होगा, उसका हृदय पवित्र होगा। लेकिन यहां देखा जाता है कि ये इंद्र का वध करने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया, उस मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई, उच्च हरस और दीर्घ, शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, हरस और दीर्घ, तो हरस मतलब थोड़े समय, तुरंत उच्चारण करना चाहिए था, उसने लंबे समय तक उच्चारण किया, थोड़ा कर दिया, जैसे ही लंबे समय तक उच्चारण किया उसका परिणाम बदल गया। ये भौतिक जगत के कार्य का फल है, ये भौतिक जगत के कार्य का फल है। जब हम कभी कभी अपना हित करना चाहते हैं तो अहित हो जाता है। हम शास्त्र का पूर्ण रूप पालन करते हैं, पूर्ण जैसे महाराजा नहुष थे, नहुष हमेशा यज्ञ किया करते थे, दान किया करते थे, अब हमेशा एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पुण्य कर्म है, हमेशा किया करते थे। लेकिन एक बार उनकी गलती हो गई, भूल से एक गाय दूसरे गाय को दूसरी बार दान कर दिया, सेम गाय को दूसरी बार दान कर दिया। ये भौतिक जगत में गलती होना हमेशा संभव है, हमेशा संभव है। कोई भौतिक कार्य गलतियों से हमेशा ग्रसित है, हमेशा, कोई भी व्यक्ति हो। जैसे महाराजा नहुष थोड़ी सी गलती करने कर दिए, उस गलती का क्या परिणाम हुआ, गिरगिट बने। लेकिन महाराजा नहुष ने जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब इग्नोर किया, उस पर ध्यान वो नहीं, उनकी रुचि उस पर नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। उधर देखा जाता था, देखा जाता है महाराजा अम्बरीश हमेशा ये नवधा भक्ति में लगे रहते थे, हमेशा। नहुष की, महाराजा नहुष की रक्षा नहीं हुई क्योंकि वो श्रवणम कीर्तनम में व्यस्त नहीं थे, यज्ञ में हमेशा व्यस्त, करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करते थे, रुपया खर्च करते थे। लेकिन इधर अम्बरीश महाराज हमेशा, उनका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता था, जिह्वा से उनका उच्च नाम का गुणगान करते थे, शरीर से उनकी सेवा, भक्तों की सेवा, धाम की सेवा, प्रणाम करना, ये सब हमेशा उनका दिन व्यतीत होता रहता। परिणाम क्या हुआ, हमेशा भक्ति को कहते हैं शुभदा, आला स्पीशियस। आला स्पीशियस सुभान पीर्णम जत्र सर्व जगत अनुरक्ता। भक्ति में, भक्ति हमेशा शुभ कार्य है, चाहे व्यक्ति कनिष्ठ अधिकार का कनिष्ठ प्लेटफॉर्म धरातल पर भक्ति करे, चाहे एक नाम ले, चाहे 3,00,000 नाम ले, भक्ति हमेशा शुभदा है। तो अम्बरीश महाराज राजा थे लेकिन यज्ञ पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, हमेशा श्रवणम कीर्तन में व्यस्त रहते थे, राज्य का भी ध्यान नहीं देते थे, कौन रक्षा करेगा। जब दुर्वासा ऋषि ने आक्रमण किया उनके ऊपर, परिणाम क्या हुआ, भगवान ने रक्षा किया। हम सभी लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन यह जानना चाहिए हम किसमें व्यस्त हैं। जैसे अभी कार्तिक का महीना है, ये बहुत अच्छा है, दर रोज परिक्रमा करना, दर रोज दान पुण्य करना, ठाकुर जी की सेवा करना, सब भक्ति के अंग है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या है, क्या अधिक बढ़ाना है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गोस्वामीगण आचार्यगण भक्ति के हर साधन करते थे लेकिन इस जो युग धर्म है संकीर्तन, इसको अधिक बढ़ाते थे, अधिक। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, वृंदावन का जीवन का अर्थ है दो, जप करना, भागवतम का रसा स्वादन करना। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं कि वृंदावन में बहुत भक्त ऐसे हैं 128 माला करते हैं, प्रतिदिन भागवतम, ये वृंदावन का जीवन है। तो हम लोग क्या है, मूल शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, मूल शिक्षा, समय के अनुसार क्या बढ़ाना है, किस स्थान पे जाएं उस समय से क्या करना है, क्या करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं आम तुलना, ये भौतिक जगत में कोई भी कार्य किया जाए, मैं इसका वर्णन करना चाहता हूं, जैसे त्वष्टा जैसे महान ब्राह्मण भी मंत्र के उच्चारण में गलती किए, क्योंकि जब व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित होता है तो निश्चित गलती करेगा। जब व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है गलती का कम चांस है, क्यों? वो शास्त्र के अनुसार जीवन चलाता है, साधु को उसकी अपनी इच्छाओं से ग्रसित नहीं होता है, ग्रसित नहीं होता है। तो त्वष्टा ने अपनी इच्छाओं से ग्रसित होकर, जब त्वष्टा साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये पहली बार वो यज्ञ नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं त्वष्टा ऋषि पहली बार यज्ञ कर रहे थे, हमेशा सब यज्ञ किया करते थे, उनका प्रोफेशन था यज्ञ करना, फिर भी भगवान ने गलतियां करा दिया। क्यों? आप देखिए पोषण, भगवान ने गलती करा दिया क्योंकि इंद्र की रक्षा के लिए, अगर गलती नहीं होती तो इंद्र की रक्षा नहीं होती, इंद्र की रक्षा। और फिर जब गलती करा दिया, उच्चारण कम कर दिए, तो है तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जो इंद्र जिसका शत्रु हो, इंद्र जिसका शत्रु है, जो इंद्र का शत्रु है, जो इंद्र का शत्रु है, अभी वो चाहते थे कि इंद्र जिसका शत्रु हो ऐसा असुर पद पैदा हो और उसका वध करे, और इधर जब उच्चारण हो गया तो उसमें इस अर्थ हो गया कि इंद्र जिसका शत्रु है, जिसका शत्रु इंद्र है। तो जब वृतासुर पैदा हुए तो वास्तव में इंद्र वृतापुर के शत्रु नहीं थे, इंद्र के शत्रु वृतासुर थे। अगर पढ़ा जाए ध्यान से भागवतम, हम आगे पाएंगे, तो वृतासुर तो परम भक्त थे, परम भक्त थे, महाराज चित्रकेतु थे, तो उनकी शत्रु की, इंद्र के प्रति शत्रु की, शत्रुता की भावना नहीं थी, और इसलिए इंद्र को हमेशा इनकरेज करते थे, उत्साहित करते थे, आप लड़ो बध करो, लड़ो बध करो। लेकिन इंद्र वो सोचते थे कि वृतासुर हमारा शत्रु है, वृतासुर हमारा शत्रु है। जैसे परिवर्तन आया उसी समय इंद्र की रक्षा हो गई। ये भौतिक जगत का कोई भी कार्य है, चाहे यज्ञ हो, देखिए हम कितने यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सब यज्ञ अच्छे हैं, भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ ज्ञान तपह कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तपस्या कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस प्रकार भौतिक लाभ के लिए जब कोई यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ में त्रुटि इसलिए आ जाती है कि हम भौतिक भावनाओं से इतने ग्रसित होते हैं तो निश्चित है वो रजोगुण के प्रभाव से मिस्टेक हो जाता है। जब उसका मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, तो उसका परिणाम 100% अलग होता है। लेकिन जो संकीर्तन यज्ञ है, उसमें कोई गलती का प्रश्न नहीं उठता होता है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करने के लिए कोई जरूर आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाएं तब संकीर्तन यज्ञ हो, या पहले परफेक्ट हो जप करने में तब आप महाराज जप करना चालू करें संकीर्तन यज्ञ, इसकी कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद पुराण से कोटेशन देते हैं, कहते हैं ये जो संकीर्तन यज्ञ है, नाम जप्य है, उसके लिए दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर कहीं भी ये संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप 50 लोग इकट्ठा हो तभी, अकेले जो जप करें वो भी संकीर्तन यज्ञ है, 10 लोग मिलकर करें तो भी संकीर्तन यज्ञ है, शुद्ध भक्तों में करें तो भी संकीर्तन यज्ञ है, अशुद्ध भक्तों में करें तो भी संकीर्तन यज्ञ है, अपराध से मुक्त होकर करें तो भी बेनिफिशियल है, लाभदायक है, अपराध के साथ करें तो भी लाभदायक है। तो आप देखिए इस ये यज्ञ जो संकीर्तन यज्ञ है, इसमें कोई प्रकार की त्रुटि हो ही नहीं सकती है, कोई प्रकार की, चेतन महाप्रभु की देन है, चेतन महाप्रभु महाबदान्य है, अवतार है, नमो महाबदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायक है। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए, और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। कहीं नहीं वर्णन किया कि भौतिक चीज के लिए करना चाहिए। यहां तक कि संकीर्तन यज्ञ हमके हमें हम लोग को भौतिक वस्तुएं भी प्रदान करती हैं। कोई भी भक्त, इतने संसार में इतने भी भक्त हैं, हर भक्त की हजारों समस्या है, पर जो संकीर्तन में लगे हैं हर समस्या का समाधान होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति जो संकीर्तन यज्ञ से प्रारंभ होती है वो सुविधा है। सबकी समस्याओं को सुविधा का अर्थ है कि ये संकीर्तन यज्ञ में जो लगता है वो सबसे पहले उसमें सद्गुण उत्पन्न होते हैं, सद्गुण उत्पन्न होते हैं। आप देखिए इस यज्ञ से त्वष्टा के हृदय का विकार दूर नहीं हुआ। आप पाएंगे उनके हृदय का ये विकार दूर नहीं हुआ। ठीक है, जो हो गया सो क्षमा करो, जो होना है सो होना है, अपन इच्छा होत नहीं, हर इच्छा बलवान। ब्राह्मण है कि सोचना चाहिए हमारी इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो भगवान चाहते थे वही होता है। तो हो सकता है कि भगवान की इच्छा रही होगी, हमारे लड़के का वध कर दिया इंद्र ने। और आप सोचिए, अब ये भौतिक आसक्ति इतनी कठिन है, ये आज से नहीं, सदियों से, जब से भौतिक जगत है हम सभी लोग उसी आकर्षित से आसक्ति से ग्रसित हैं। आप देखिए इंद्र ने इनवाइट किया यज्ञ करने के लिए, सब कुछ खर्चा इंद्र ने किया। सबको पता है इंद्र को शक्ति शक्तिशाली बनाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये यज्ञ संपन्न किया जा रहा है जिससे असुरों का विनाश हो। लेकिन ऊपर से इंद्र के लिए आहुति डाल रहे हैं, अंदर से असुरों के लिए भी डाल रहे हैं। ये इतनी आसक्ति, ये भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति बहुत कठिन है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु नयो साधुस्कृतम मुक्त द्वारम अपावृतम। कहते हैं प्रसंगम इतनी कठिन, बिंधनते हृदय ग्रंथि, ये ग्रंथि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है तोड़ना, आसान नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इतनी मुश्किल है कि हम लोग सब, आप देखिए इतना महत्व है भक्ति का, माला का, जप का, जितने भी साधन भक्ति के हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबका शास्त्र में भूर भूर प्रशंसा की गई है। स्पेशली भक्त समीर सिंधु पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर ढंग से रूप गोस्वामी ने साइंट वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है कि ये तुलसी परिक्रमा का क्या फल है, जप का क्या फल है, दीक्षा का क्या फल है, धाम में वास करने का क्या फल है। फिर भी हमारी ग्रंथियां इतनी स्ट्रांग हैं, इतनी स्ट्रांग हैं, फिर भी हम धाम में रहते हुए भी हमारी आसक्ति बनी रहती है। अनुभव होगा सबकी बात, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आसक्ति बनी रहती है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं क्यों, पर इसका अर्थ नहीं हुआ कि रूप गोस्वामी की वाणी गलत है, शास्त्र का वचन गलत है, नहीं। इस प्रभुपाद जी एक्सप्लेन बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण के द्वारा बताते हैं क्यों ऐसा होता है। प्रतिदिन तुलसी का दीप दान करने से, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, ठाकुर जी का प्रणाम करने से, दंडवत करने से, आप भक्त समीर सिंधु पढ़ेंगे कितना फल का वर्णन है। लेकिन वो फल हम लोग में प्रकट क्यों नहीं होता है, हमारा हृदय पाषाण जैसे ही क्यों बना रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर, ये सर्वविदित उदाहरण है। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक बार शादी का समारोह था, तो शादी में लड़के वालों ने बारात लेके जा रहे थे, तो उस समय तो इतनी गाड़ियां मोटर नहीं थी, तो लोग मोर और लेस लोग नदी के रास्ते से जाया करते थे। तो नौका में बैठ गए और बैठने के बाद वो सब थोड़ा नशा कर लिए थे और उसमें वो सो गए, और चलाने वाला भी चला रहा है, मतलब चला रहा है, लेकिन वो रात भर वो चलाया, रात भर चलाया, लेकिन नौका वहां की वहां खड़ी रह गई, परिश्रम किया खूब, रात भर चलाया, वहां की वहां रुकी रही। सुबह सब नशा उतरी, हो देखे क्या है, हम लोग तो वहां के वहां है, बारात में तो पहुंचे नहीं, क्या होगा। तो पता लगाया ऐसा क्यों हो गया, पता लगा उसने जो अंकल है वो वहीं का वहीं पड़ा था, उसको खोला ही नहीं था। तो जो भक्ति है, हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन अपनी जो जहां से आए हैं वहां की भावना को हम लेके आते हैं। ये सच भी है, हम जहां जाते हैं अपनी भावना लेके जाते हैं, अपनी भावना लेके जाते हैं कहीं भी जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम जब भक्ति करते हैं, तो माला जप करते हैं, तो वही मेडिटेट करते हैं हमारी भावनाओं का। जब भावना उदय होती है तो हमको हेट करना चाहिए, घृणा करना चाहिए, हाँ मैं तो ये माला जप करते समय ये भावना क्यों आ रही है, पूछना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन वो भावनाओं को हम अंदर लेकर के माला जप करते हैं। तो हमारा जो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एंकल, वो हम वो उसके लिए कोशिश नहीं करते कैसे छुड़ाएं, कैसे छुड़ाएं। हालांकि भक्ति इतनी महान है, कोशिश न करने पर भी वैराग्य ला देती है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जनत यासु वैराग्यम ज्ञानम च आयधाय दुखम। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन जब व्यक्ति कोशिश करता है, जब प्रयत्न करता है और साथ में शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करता है, सेकंड में, एक सेकंड में वैराग्य उदय होता है हृदय में, एक सेकंड में। लेकिन जब हम वही मेडिटेट, भगवान तो क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र सिंपल अक्षर तो है नहीं, अभिन्नत्वम नाम नामिनः, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान तो देखते हैं हृदय में, चैत्य रूप में है, परमात्मा के चैत्य रूप, गुरु के रूप में है, और हम जब वो नाम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो जब हृदय की भावना है तो भगवान तब वो नाम प्रभु बड़े दयालु हैं, सोचते हैं ठीक है इसको यही दे दो, थोड़ा इसमें आनंद ले, थोड़ा यही दे दे। जो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी हमारा, हम लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, भक्त शास्त्री करते हैं, भक्ति वैभव करते हैं, तो एक पढ़ाया जाता है मूड एंड मिशन। प्रभुपाद का रास्ता क्या है, और रास्ता हमारे जीवन का मिशन है कि नहीं। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें जानना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का मूड क्या है। श्रील प्रभुपाद जी का मूड अपने आचार्यों के मूड से अलग नहीं है। कहीं भी देखेंगे आप, कोई भी लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद मोर ऑर लेस हमेशा एक कोट करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्य। हम लोग को हर अभिलाषाओं से मुक्त होना चाहिए, एटलीस्ट मुक्त ना हो, एटलीस्ट इस प्रकार की भावना होनी बनानी चाहिए। हम मुक्त क्यों नहीं हुआ, हमारा हृदय क्यों ग्रसित है। इसके बाद दवा काम करेगी, दवा तुरंत काम करेगी। ये दवा तो जैसे मैंने बताया, ये एक ही यज्ञ संकीर्तन यज्ञ दिव्य यज्ञ है, ये कलयुग में ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अपने प्रयास से भौतिक भावनाओं से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये केवल संकीर्तन यज्ञ के कृपा से हम मुक्त हो सकते हैं, संकीर्तन यज्ञ और साधु। जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जब हिप्पियों के साथ वो माला कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो वैराग्य कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में जब वो श्रवणम और कीर्तनम दोनों कर रहे थे तो वैराग्य आ गया, सभी बुराइयां छूट गई। ये प्रभाव है। तो हम लोग क्योंकि हमारा उत्साह ढीला होता जाता है, बढ़ता नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार नैरोबी में गए थे, तीन बार गए थे नैरोबी में, श्रील प्रभुपाद जी उसमें ब्रह्मानंद जी थे, तो ब्रह्मज नंद जी ने ईस्ट अफ्रीका में इस्कॉन मिशन स्टार्ट किया था, तो ब्रह्मानंद जी प्रभुपाद जी से उसमें भक्त लोग ऐसे सब मंदिर छोड़ के चले जाते थे। तो ब्रह्मानंद जी ने उसे प्रभुपाद जी के सामने क्वेश्चन किया कि प्रभुपाद जी ये भक्त लोग सब एक माला दो माला करके चले जाते हैं, कहते हैं हम सावधानी के साथ एक माला दो माला तीन माला जैसे यज्ञ बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ हम जप करके ज्यादा अधिक माला करते हैं तो असावधानी हो जाती है, उसका फल नहीं मिलता है। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया ब्रह्मानंद को, अधिक जप करना ही सावधानी के साथ जप करना है, कोई सावधानी के साथ जप नहीं कर रहा है तो अधिक माला नहीं कर सकता है, अधिक जप नहीं कर सकता है। तो शुद्ध भक्ति का अर्थ है ऑटोमेटिक, जैसे जब शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चलेंगे तो आपका स्वाद बढ़ेगा, टेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो जिस जो कार्य कर रहे हैं वो अधिक करना चाहेंगे, अधिक करना चाहेंगे। ये सिंपल चीज है, बहुत साधारण सिंपल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं संकीर्तन यज्ञ में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है, फंसते अगर सावधानी से पूर्वक किया जाए तो इसका फल तुरंत मिलता है, तुरंत ही मिलता है, बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है बहुत समय इंतजार करने की, यदि सावधानी पूर्वक किया जाए। यदि असावधानी से भी किया जाए तो इसका परिणाम निगेटिव हो ही नहीं सकता है, हमेशा इसका परिणाम पॉजिटिव होगा। चाहे किसी भी, जैसे मैं बताया, चाहे अपराध पूर्वक किया जाए या अपराध के बगैर, लेकिन भौतिक कार्य कोई भी कितनी भी सावधानी से करें, यज्ञ क्यों ना हो, दान क्यों ना हो, व्रत क्यों ना हो, निश्चित उसमें त्रुटि रह जाएगी। ये क्योंकि भौतिक जगत का एक लक्षण है, गलती करना, त्रुटि का होना हमेशा लक्षण है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी गलती हो गई, अपने मन को, जैसे विश्वामित्र 60,000 बरस तपस्या किए फिर भी मेनका के एक घुघरु की एक झनकार ने उनको ध्यान को तोड़ दिया। हम पाते हैं हरदास ठाकुर का ध्यान संकीर्तन यज्ञ में लगे हुए थे और उनका मन संकीर्तन यज्ञ में आवेशित था, नाम श्रवण। कभी कभी हम लोग कृत्रिम ढंग से मन को बस में करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का सिस्टम है सुन के बंद में बस में करना, सुन। कभी कभी हमारा मन बहुत भागता है तो हम बहुत ढंग से मन को बस में करते हैं, फोटो रख के, ये करके, वो करके, कोई कृत्रिम ढंग से, पर उतना काम नहीं आता है जितना प्रभुपाद जी का जो प्रोसेस है हियरिंग। जब अपनी आवाज को जितनी ध्यान से सुनते हैं उतनी ही मात्रा में हमारा मन शुद्ध होता है। जितनी मात्रा में मन शुद्ध का अर्थ है कृष्ण में आसक्त होना, अशुद्ध का अर्थ है कृष्ण में भौतिक वस्तुओं में आसक्त होना, यही शुद्धता और अशुद्धता का भेद है, और इसको दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं ही समझ सकते हैं कि हमारा मन कितना कृष्ण में आसक्त है, कैसे कृष्ण सेवा में। यदि आपका मन कृष्ण आसक्त है तो आप भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, कृष्ण के लिए माला बनाएंगे, उनके मंदिर को साफ करेंगे। ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि मन में लीला चल रही है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत उच्च धरातल पर होगा। अब देखिए, जब जैसे आप जिसका मन जिसमें आसक्त है, माँ का मन बच्चे में आसक्त है तो जो हर चीज जो देखती है लाभदायक बच्चे के लिए वो प्रयास करके लाती है, वो फिजिकल वर्क, इसको कहते हैं भक्ति। इसी के न सेवनम भक्ति उच्चते, इसको ही भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं कि बैठा रहे, बैठ सकता ही नहीं है, जैसे कोई अपने प्रेमी के लिए कभी नहीं बैठ सकता है, उसकी इंद्रियां कभी बस में नहीं हो सकती हैं अपने प्रेमी के लिए, हमेशा इंद्रियां उसके कार्य करेंगी। उसी प्रकार से जो ही हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं उसी समय इंद्रियां और मन में पूर्णता आने, यद्यपि इंद्रियां अपूर्ण हैं फिर भी जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं इंद्रियां पूर्ण रूपेण कार्य करती हैं, पूर्ण तो भक्त कभी गलती नहीं कर सकता है। इसलिए जो संकीर्तन यज्ञ है वो साधु शास्त्र गुरु के आदेश पर आधारित है, साधु शास्त्र गुरु आदेश, स्वतंत्र नहीं, साधु शास्त्र, इसलिए उसमें त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। गलती है तो अपने में हम कैसे कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक दिव्य मंत्र में कोई दोष नहीं होता है, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ में, जो कि इस क्योंकि इस युग में हम सभी लोग योग्य नहीं हैं, हम लोग क्वालिफाइड नहीं हैं दूसरे यज्ञ को करने के लिए। जब त्वष्टा जैसा व्यक्ति इतना परफेक्ट शुद्ध ब्राह्मण, परफेक्ट ब्राह्मण भी गलती कर सकता है, तो हम लोग तो हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकते, हरे कितना बोलते हैं, लेकिन चाहे हरे कृष्ण बोलो चाहे हरे कृष्ण कृष्ण बोले उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। भाव ग्राही जनार्दन है, भगवान कृष्ण हमारे आंतरिक भाव को स्वीकार करते हैं, ऐसे हम कोशिश तो कर रहे हैं, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो। लेकिन भौतिक जगत का कोई भी कार्य पहले बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कोई भी कार्य बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बहुत ट्रेनिंग के बाद भी ये श्योर नहीं है हमको सफलता मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। लेकिन भक्ति में कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है अधिक, कोई भी जैसे उदाहरण है पुराणों में हम सब जानते हैं, नारद ऋषि जब प्रयाग में आए तो नारद ऋषि आए तो वहां मृगारी हंटर को मिले, तो हम 5-10 मिनट मिले होंगे, 2-5 मिनट उनके उपदेश से हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया पाप कर्म से मुक्त होकर के, और फिर दोबारा नारद ऋषि आए तो वो नारद ऋषि को प्रणाम करने जा रहा है, पर उस समय उसके सब सदाचार उसके शरीर में है, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया, कोई अटेंड नहीं किया कुछ क्लास, क्योंकि ये संकीर्तन यज्ञ ही ऐसा है, सदगुण प्रदत्तम संपूर्ण सदगुण सदाचार केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति के शरीर में प्रकट हो जाता है। यश्या से भक्ति भगवत अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, कहते हैं जितने भी गुण हैं आवश्यक नहीं है, कितने महान भक्तों को देखेंगे उनके कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लिखाई नहीं है, अगर केवल एक ही पढ़ाई अच्छा से जाने कैसे जप करे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर प्रकार का सदाचार, बोलना बैठना उठना सब आ जाएगा, स्थिर प्रज्ञ प्रज्ञ से का भाषा किम प्रसादित किम प्रभाषित ब्रजित किम, कहते हैं जैसे फिक्स भक्ति में हो जाता है उसको बोलना आ जाता है, चलना आ जाता है, उठना आ जाता है, बैठना आ जाता है, सब सदाचार आ जाता है। लेकिन कितना भी परफेक्ट कोई हो, आप देखेंगे बड़ी बड़ी पीएचडी की डिग्री लेके आते हैं यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, सदाचार नहीं है, पिता के साथ कैसे बात करना है, जैसे ही वो डिग्री मिल गई तो सबसे पहले माता पिता को निगलेक्ट करते हैं, उनके लिए निगलेक्ट करने के लिए ओल्ड हाउस बना दिया और ओल्ड हाउस तो ठीक है, कहते हैं माता पिता हमारे वो तो डस्टबिन है, उनको डस्टबिन में डालना चाहिए, इतना बड़ी डिग्री लेने के बाद। लेकिन जो भक्ति करता है कोई डिग्री नहीं है कोई कुछ नहीं है, सदाचार है उसमें, सदाचार है सत आचरण है। जो ब्राह्मण को वृद्ध व्यक्ति को बच्चों को माताओं को स्पेशल सम्मान देना उनकी रक्षा करना, ये सब भक्तों में स्वाभाविक गुण आ जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी भक्त समय सिंधु में वर्णन करते हैं, आओ जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई अलग से जरूरत नहीं है जाके क्लास अटेंड करो शाकाहारी बनने के लिए, अहिंसक बनने के लिए, मृगारी ने अहिंसक बनने के लिए क्लास अटेंड नहीं किया, केवल हरे कृष्ण महामंत्र किया। जो मृगारी हाथी भालू बड़े बड़े जानवर गाय को मार करके आधा मार करके हंसता था आनंद लेता था, आज वही मृगारी एक चींटी को नहीं मारना चाहता, उसने कोई वेजिटेरियन क्लास अटेंड नहीं किया, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जितने भी सद्गुण हैं ये संकीर्तन यज्ञ में समाहित होने से स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन भौतिक कार्य चाहे साइंटिस्ट क्यों न हो जाए, फिर उसमें सदाचार नहीं आ सकता है, कदाचार ही आता है। प्रभुपाद जी कई लेक्चर में हमेशा बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्होंने क्या खोजा है, केवल संसार को नाश करने के लिए, कोई सदाचार नहीं है। क्या खोजा, कैसे अबोर्शन करें, कैसे ये करें, कैसे वो करें, बड़े बड़े केवल विनाश का ही रास्ता दिखाया है। हमको लगता है कि नहीं नहीं बहुत एडवांस है, लेकिन जो भक्ति का रास्ता है वही सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि हर व्यक्ति में सद्गुण आता है। तो हर व्यक्ति का सद्गुण सदाचारी होगा तो निश्चित है पूरा समाज संसार विनाश से बच जाएगा। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि तोष यज्ञ करने के बावजूद भी, ब्राह्मण होने के बावजूद भी, परफेक्ट ब्राह्मण होने के बावजूद भी त्वष्टा ने गलती किया और उसका परिणाम अलग हुआ। और दूसरा कि चाहे कितना बड़ा ब्राह्मण क्यों न हो, अगर ब्राह्मण के स्तर पर है तो उसका काम ही रोटी कपड़ा और मकान, पेट पूजा ही होगा। लेकिन जब वैष्णव बनता है, जब वैष्णव बनता है तब वही व्यक्ति हर जीव का भरण पोषण कर सकता है। ये भक्ति से ही ये सद गुण आते हैं। हरे कृष्ण। गंधराज सिंह भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।